Welcome back to Akashvani's special program on Operation Sindoor, India's decisive response to terrorism. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Sonu Sood. And once again, joining us in this discussion is senior journalist Madan Jera. Mr. Jera, welcome to the program.
Thank you.
Also joining us in this program is Major General Ashok Kumar. General, welcome to the program. Major General Ashok Kumar, my first question is to you just a little while ago. Okay, I will begin with Mr. Jera first, you first. A little while ago, we saw that a press conference was briefed, was addressed by the director generals of the three services, where they gave out details of the Operation Sindoor. They gave out various details as to how many terror camps were targeted, how many terrorists were killed. But the few things that stood out for me was that it said very clearly that our fight was with terrorists. They said we were very restrained in our response, but it was the other side which escalated the situation. So your first response to this press conference, which gave out all the details of what has happened since the night of 6th and 7th May.
देखिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो तीनों सेनाओं के डीजीएमओ वहां पर मौजूद थे तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे एक तो अपने पूरी जो रणनीति है पूरी प्लानिंग है उसके बारे में बताया दूसरा उनका ये कहना था कि 7 मई कि जो तड़के वहां पर एयर स्ट्राइक की गई जो कार्रवाई की गई उसका मकसद सिर्फ ये था कि वहां पर जो आतंकवादी कैंप हैं जिनको हमारी सेनाओं ने आइडेंटिफाइड किया था और उन कैंपों पर हमारा जो आतंकी है वहां पर और वो आतंकी भी वो थे जिन्होंने भारत में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया था
जी।
पहलगाम की घटना को अंजाम दिया था पुलवामा की घटना को अंजाम देने वाला आतंकवादी भी वहां छुपे हुए थे IC-814 जो प्लेन हमारा हाईजेक हुआ था उसमें शामिल आतंकवादी भी वहां पर छुपे हुए थे तो हमारा टारगेट था कि वहां पर आतंकी कैंपों को नष्ट करना और 9 कैंपों पर निशाना साधा गया था और सभी मामलों में भारतीय सेनाओं को सफलता मिली थी पहली बात तो उनका यही मकसद था बताने का कि हमारा जो टारगेट था हमारा जो लक्ष्य था उसमें हम 100% सफल रहे दूसरी बात उन्होंने वहां पर यह बताई कि किस प्रकार सेनाओं ने इस सटीक ऑपरेशन को अंजाम दिया और जो हमारा टारगेट था अब जैसे उन्होंने बहावलपुर में दिखाया कि किस प्रकार वहां पर मरकज का बहुत बड़ा एरिया है लेकिन उन्होंने हर जगह वहां पर हमला नहीं किया उसी जगह पर हमला किया जहां पर हमारी खुफिया एजेंसियों ने बताया था कि सारे आतंकवादी यहां पर रह रहे हैं यहां पर छुपे हुए हैं उस स्पेसिफिक एरिया में और उन्हें बकायदा वीडियो पर निशान लगा के दिखाया कि यहां पर हमने अटैक किया और यहां पर उसमें 9 लोग मारे गए थे और जो हाफिज सईद के रिलेटिव थे और जिसमें 5 कोर आतंकवादी भी शामिल थे जो भारत में वांटेड थे तो किस प्रकार एक टारगेट को हमने फिक्स करके निशाना लगाया और उनको अटैक किया ये उसमें दिखाया गया था
Major General Ashok Kumar, I want to ask you that as we are just discussing, and you must have heard the press conference. Of course, details of the operation, the 3 days, 4 days of operation that have happened were given out. But also there was one thing that was said was that, despite India exercising all the restraint and making sure that only, no civilian damage, the minimum of civilian damage was there. And it was Pakistan side, which has, which escalated the whole situation. So it was time. At a point, it was time to convey message that a decision was taken to attack where it will hurt. In fact, and that is a very decisive message that has been sent out by the Indian Armed Forces. What do you have to say for that?
Well, if you see, as far as the terrorist activities are concerned in India, these are not being done only by the terrorists alone by themselves. They are being actively supported by Pakistan military and their ISI. The kind of support in terms of the infrastructure, funds, weaponry, and all kind of inputs these people get from the Pakistani military establishment is beyond comprehension. So this time, once they killed our people in Pahalgam, it was very, very clear that we have to take the battle to the terrorist, irrespective of their place from where they are going to operate.
Yes.
In case of previous responses which we done, which we had done post Uri strike and Pulwama, we had limited our operations to Pakistan occupied Kashmir only across the line of control, one time by the ground forces and subsequently by the using the air power. But this time we knew for certain that the launch pads, since we were not responding immediately within 24 hours, we wanted to gain authentic intelligence and wanted to do the precision strikes. So Pakistan initiated actions to move, you know, some of the terrorists which were closer to the line of control. And therefore, we decided that in case we have to hit them hard, we have to go to their prime place of stay.
Yes.
Which was Bahawalpur and Muridki. And you would be fully aware that the kind of hurt they have been, you know, caused on these terrorists. We have killed, as per one estimate, as outlined during the press briefing today, close to 100 terrorists have been killed. And in that also, there are five major terrorists whose identities have already been confirmed, who have been involved in multiple operations in Jammu and Kashmir. They have been involved in the hijacking of IC-814, which happened in December 1999, and also in the killing of Daniel Pearl in Pakistan.
Yes.
And it is not that the only these five are the heinous terrorists which have been targeted. More and more details are being corroborated. And I think once we go ahead, we will be able to come out with the name of more terrorists which have been seriously involved in terror operations inside India and particularly in Jammu and Kashmir.
Right.
So it was targeted towards that infrastructure, towards terrorists. And nothing beyond that. We did not have any intention to cause damage to the civilians or to the militarist infrastructure. And after launching that operation on the morning of 7th May, we made that absolutely clear. Pakistani establishment had an exit option on that day itself.
Mm-hmm.
Had they not taken any action the night of 7th and 8th of May, India would not have got further on the escalatory matrix. And because our aim was achieved to revenge what was done in Pahalgam.
Right.
But since Pakistanis, you know, responded on night 7th, 8th May with close to 500 drones, it was critical for us not only to protect our assets and down those drones, but also to give befitting response. And if you see in those two nights, a number of actions were taken by the Air Force, the long-range missiles and long-range drones with lethal capabilities, where we have activated and demonstrated our capability, you know, damaging a large number of their airfields, and we have gone into the fairly in deep areas in their critical assets they have not been able to protect.
Right.
But at the same stage, we have always maintained that the escalation is not the aim, and it is up to Pakistan where does he want to take.
Right.
It is good, reasons notwithstanding, a good sense has prevailed on Pakistan. And yesterday, their DGMO called our DGMO at 15:35, and they agreed to cease the hostilities for the time being at, you know, Indian Standard Time, 1700 hours.
Yeah.
And tomorrow, 12 o'clock, they are again going to have a meeting.
Yes.
To work out the modalities as to how we take it further.
Right.
There have been a number of other
Major General, I will interrupt you here because I want for our, you know, our listeners to, you know, who may not have heard the press conference earlier in the evening, we also want to, you know, them to listen to what was said at this press briefing. So let's first listen to what Air Marshal AK Bharti said on the targets that were selected by the armed forces during this press conference.
Our fight was neither with the Pakistani military nor with anybody else who's there on the other side. Our fight was with the terrorists. We neutralized the terrorists that we selected to be neutralized, and thereafter we only maintained the air defense posture. However, we were relentlessly pounded by waves after waves, night after night, by his UCAVs, by his drones, and by his other unmanned aerial systems. And that left us with no choice but to retaliate, and yet our retaliation was calibrated, it was graduated, and it was proportionate.
मदन जी, क्या कहेंगे आप जो अभी हमने सुना कि किस तरह से हमने इतना उनका जो अटैक था पाकिस्तान की तरफ से उसको हमने फॉइल किया. ये जो भारतीय सशस्त्र बल हैं उनकी जो प्रिपेयर्डनेस है, उनकी जो यू नो क्वालिटी है, उनके इंफ्रा उनके पास जो आर्सेनल है उसकी जो क्वालिटी है और उनकी क्षमता के बारे में क्या कहता है.
देखिए, आप अगर इस पूरे प्रकरण को देखें, चार दिन तक जो पूरा जंग जैसी माहौल रहा उस पर अगर नज़र डालें, तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि 10 तारीख को अचानक पाकिस्तान फिर खुद फ़ोन करके क्यों कहता है कि हमें संघर्ष विराम करना है, हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें लड़ाई नहीं करनी है, उसने हमारे डीजीएमओ को फोन क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि 10 मई की सुबह जो लड़ाई हुई है, 10 मई की सुबह पहले पाकिस्तान की तरफ से भारत के 26 स्थानों को निशाना बनाया गया था, लेकिन उसके जवाब में जब भारत की तरफ से पाकिस्तान के 8 एयरबेस पर निशाना बनाया गया और वो निशाने अचूक रहे और उन निशानों पर वहां पर भारी नुकसान हुआ एयरबेस पे, तो उसके बाद जो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ थे मिस्टर मुनीर, तो उन्होंने सीधे अमेरिका को फोन लगाया और उन्होंने कहा कि अब बहुत ज्यादा हो गया हमारे, मतलब तो इतना नुकसान हो चुका है, इसको बर्दाश्त करना हमारे बस की बात नहीं है। तो उसके बाद अमेरिका ने उनकी मदद करने में, उन्होंने कहा अगर आपको युद्ध रोकना है तो भारत इसमें मानने वाला नहीं है, आपको अगर युद्ध रोकना है तो आप अपने चैनल से, जो आपका चैनल है बात करने का, उससे सीधे बात कीजिए। और ये आर्मी में एक चैनल होता है, अगर आप कोई बात करनी होती है आपको डीजीएमओ से बात करनी होती है, आर्मी चीफ भी सीधे बात नहीं करते, रक्षा मंत्री सीधे बात नहीं करते, एनएसए सीधे बात नहीं करते। भारत सरकार ने आज क्लियर भी कर दिया कि न तो इसमें एनएसए ने बात की, न विदेश मंत्री ने बात की, न रक्षा मंत्री ने बात की, सीधे पाकिस्तान का फोन डीजीएमओ के पास आया। और जब फोन आया तो उसमें डीजीएमओ किसी कॉन्फ्रेंस में बिजी थे, उन्होंने कहा बाद में फोन करना। तो फिर उसने 3 बजे फोन किया, 3:35 पर फोन किया, फिर बात हुई, फिर उन्होंने कहा हमारे तो पहले से ये नीति रही है कि अगर आप जवाब दोगे हमारी, कोई कार्रवाई करोगे तो हम उससे बढ़ के कार्रवाई करेंगे, तो ये भी बात सामने,
लेकिन हम शुरुआत नहीं करेंगे,
शुरुआत नहीं करेंगे
जी, जी।
ये भी इसमें बात आज सामने आई है कि प्रधानमंत्री ने जब ये ऑपरेशन सिंगूर शुरू हुआ था उसी समय कह दिया था कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के कैंपों के खिलाफ है, हम आतंकवाद के कैंपों को तोड़ेंगे, अगर उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई होती है, वहां से अगर गोली चलती है तो हम गोला चलाएंगे, और ये अमेरिका को भी बता दिया गया था
जी। सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड इन दिस डिस्कशन, लेट्स नाउ हियर व्हाट डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव खई सेड ऑन सीज़फायर वायलेशन ड्यूरिंग दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस।
He had announced certain measures, and then of course Pakistan had in turn made its own announcements. Since then there have been certain violations of this ceasefire understanding, and of course after the 7th of May, like I pointed out during my statement, that there have been numerous violations on the line of control especially, and of course along the international boundary, by the Pakistan Army and the Pakistan Air Force. This understanding that we spoke about yesterday, no, it was not for 3 days. It was first to stop aggressive and hostile activities immediately, let that order and direction settle down for, you know, about 36 hours, and thereafter discuss modalities, like I said, to ensure its longevity, that is tomorrow on the 12th of May. But unfortunately, we had a violation starting at approximately 1900 hours last night, and we've sent a communique, like I said, to the Pakistan Military Operations Directorate, and we will await to what happens tonight.
Major General Kumar, I want to ask you, as we just heard DGMO Lieutenant General Rajiv Khai talking about ceasefire violation, right? Just a few hours after this agreement was, reached between India and Pakistan to stop the hostilities, Pakistan went ahead and, you know, violated this particular arrangement or this particular agreement. What is it? I mean, in such a scenario, is how can we trust the Pakistanis? How can we trust the armed forces, the Pakistanis, that they will actually adhere to this particular agreement that has been reached? Or is it even, viable to do that?
See, we are already aware about the character of Pakistan Army and Pakistan since long time. We fully know that we cannot trust them. And therefore, in the press conference, you would have seen that all the three military operations heads of Army, Navy and Air Force categorically stated that our preparedness has not gone down. We are there, and if Pakistan does any aggression of any kind tonight, now it will not be only proportionate response, it will be punitive response. It means the cost which they have to pay is going to be much, much more higher. We can look at two schools of thought. One is that the LOC fire and certain drones which we have seen at certain locations in the previous night, they were a deliberate act on part of the Pakistani military establishment. And the thing could be that whenever these agreements are reached, by the time they get communicated to the last person on the ground and they are able to sense it, at times some inadvertent wrong actions also take place. So be whatever be this, you know, whether it has been done advertently or inadvertently, we have communicated that, you know, they must stop that. In case they do anything here and after, the response is going to be punitive. So the current night is going to be a night of wait and watch. And if any actions are taken by Pakistani on line of control or anywhere on the western borders, they will be responded by all the three forces in the most punitive manner, because Operation Sindoor is continuing and our preparedness is continuing. Gee. Not only that, in the morning today, Chief of Army Staff has spoken to all the army commanders who are actually dictate the actions in the field locations to take any actions they think appropriate to respond to the Pakistani provocations and actions. So there is no ambiguity in the orders. There is no let down in the preparation. There is total unison, and Operation Sindoor is continuing. In case Pakistan launches any kind of actions, it will be responded in fullest measure.
In fact, इसी संदर्भ में war-like situation पर अभी जो press briefing हुई उसमें DGMO Lieutenant General राजीव घई ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
हमने अपनी कार्रवाई करी, हमने उसके बाद ये कम्युनिकेट करने की कोशिश करी कि हमने इस तरीके से ये जो स्ट्राइक्स हैं वो क्यों की, लेकिन जो हमारा एडवर्सरी है उसने जैसे मुनासिब समझा वो कार्रवाई करी। तो आपने देखा कि ये जो एक्टिविटीज चल रही हैं तीन चार दिन से, ये कोई वॉर से कम नहीं है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक दूसरे देश की एयरफोर्सेज हवा में नहीं उड़ती हैं और एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक्स नहीं करती हैं, हर रात इंट्रूजन नहीं होते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक सीज फायर अंडरस्टैंडिंग था, वो भी जा चुका है। उस सीज फायर अंडरस्टैंडिंग के जाते जो फायरिंग हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल में, उसमें घुसपैठ की कोशिश हो रही है। आमतौर पर ये घुसपैठ लाइन ऑफ कंट्रोल में टेररिस्ट करते हैं, लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन है कि हो सकता है ये पाकिस्तान आर्मी की टोलियां भी हों जो हमारे पोस्ट के ऊपर खामी पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो ये सारी एक्टिविटीज तो वॉर में शामिल है।
मदन जी, अभी भी बहुत सिचुएशन सेंसिटिव बनी हुई है, जैसे डीजीएमओ ने हमें अभी अभी बताया, तो क्या लगता है आपको कि अभी तक जो ऑपरेशन सिंदूर है, जिसमें जो सतर्कता दिखाई है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने, ऑपरेशनल रेडीनेस हर समय दिखाई है और एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच रहा है तीनों का, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, आपको लगता है कि वो ये तीन जो है स्तंभ, इन पे ही आगे भी जो सक्सेस हमें मिलेगी वो टिकी है?
देखिए, ये जो पूरा ऑपरेशन था तो इसकी सबसे बड़ी खूबी यही थी कि इसमें तीनों सेनाओं ने और मिलके से अंजाम दिया। हमें पहले याद है कि एक बार सर्जिकल स्ट्राइक हमने पाकिस्तान पर की थी, उस समय वो सेना ने किया था अकेले। उसके बाद जब पुलवामा की घटना हुई थी, उसके बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई थी, वो अकेले एयरफोर्स ने की थी। लेकिन इस बार तीनों सेनाओं ने मिलकर कुछ जो आतंकी कैंप हैं, जिन 9 कैंपों पर हमले हुए थे, कुछ पर सेनाओं ने किया, कुछ पर एयरफोर्स ने किया, और नेवी भी उसमें इन्वॉल्व रही है और नेवी भी पूरे अलर्ट मोड पे थी
जी।
और वो अरब सागर में पूरी तरह से अलर्ट थी। और आज नेवी चीफ, नेवी के जो वाइस एडमिरल थे वहां पर, उन्होंने ये कहा भी कि हमारी तैयारी पूरी थी और हम पूरी तरह से एक्टिव थे और हमारी क्षमता है कि हम कभी भी कराची पर कब्जा कर सकते हैं, हम कराची पर हमारी विजय करने की हमारी क्षमता है। ये बात भी नौसेना की तरफ से आज कही गई। तो ये जो पूरा ऑपरेशन है, ये दिखाता है कि किस प्रकार भारत की तीनों सेनाओं की जो एक का तालमेल है और उनकी जो ज्वाइंटनेस है वो कितनी अच्छी है। और आपको याद होगा कि हमारे देश में जो तीनों सेनाओं को मिलाकर एक थिएटर कमान बनाने की भी बात चल रही है
जी।
और बात सिर्फ नहीं चल रही है, उस पर काम भी हो गया काफी हद तक, और बहुत सारी पोस्टें ऐसी क्रिएट की गई हैं जो तीनों सेनाओं के लिए कॉमन है, और जो परचेज होने लग गई है वो तीनों सेनाओं के लिए कॉमन होने लग गई है। ताकि अगर अब एक आदमी के लिए खरीदते हैं तो महंगा होता है, हम अगर तीनों आदमी के लिए कोई सामान एक साथ खरीद लें तो उसमें रेट थोड़ा कम लग जाता है। तो ये चीज़ वहाँ पर रक्षा खरीद में भी अपनाई जाने लग गई है। तो एक जो एकजुट करने की बात है, जो ज्वाइंटनेस की बात है, तो उस पर भी काफ़ी काम हो रहा है और उसका जो नतीजा है हमने इस ऑपरेशन में देखा भी है। अब जहाँ तक कल की मीटिंग की बात है, कल बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग होने जा रही है, क्योंकि जो ये संघर्ष विराम अभी हुआ था 26 घंटे के लिए हुआ था, और 12 मई को 12 बजे DGMO लेवल की मीटिंग होनी है, और उसमें आगे इस संघर्ष विराम को विस्तारित करना है और आगे के लिए कुछ मॉडलिटी इसमें तय होनी है। कुछ एक एजेंडा बनेगा इसका, एक कोई मसौदा बनेगा जिसमें तय होगा कि आपको ये नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है। अभी तक तो सिर्फ फोन पे बात हुई है कि उन्होंने फोन किया, उन्होंने रिक्वेस्ट किया हमसे कि आप हम इसे रोकना चाहते हैं. हमने कहा तो आप, हम तो पहले से कह रहे थे कि हमारा कोई इरादा नहीं है, आप ही उसे उकसा रहे हो. जब आपने खुद इच्छा व्यक्त की है कि इसको रोकना है तो भारत ने उसे रोकने की अनुमति दे दी. तो कल की बैठक महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कल एक वायलेशन पाकिस्तान ने किया था, लेकिन उसके बाद जब भारत का रुख सख्त रहा तो उसके बाद से वो वायलेशन नहीं हो रहा है, अभी शांति बनी हुई है. तो मुझे उम्मीद की जानी चाहिए कि अच्छे नतीजे कल इसके आए.
Bilkul. And now let's listen into what DGMO Lieutenant General Rajiv Ghai said at this press conference about the number of terrorists that were killed during Operation Sindoor.
I have no doubt in my mind that we achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf and Mudassir Ahmed that were involved in the hijack of IC-814 and the Pulwama blast.
Major General Ashok Kumar, you know, Mr. Jera just told us that tomorrow's meeting between the DGMOs of India and Pakistan is very, very significant. It's very important. It's going to take place at 1200 hours. And he was just explaining to us what exactly happens during this. Can you also elaborate on what happens when this kind of a, you know, meeting happens now in the aftermath of what has happened? What is expected from this meeting?
Well, as of now, Army, Navy and Air Force are fully in operation and deployed mode in heightened degree of their preparedness as part of Sindoor, which is still continuing. Only change which has happened that the agreement was reached to stop the firing, which all was also violated Pakistan, but we took actions to negate those drone actions and elsewhere. Thereafter, the peace is continuing, you know, life is returning normal in the forward areas as well. Hopefully, Pakistan will have some kind of sense in themselves that this night also they will not do any action whatsoever. And once tomorrow both the DGMO speak, now they have to discuss the modalities of the ceasefire, which has to be honored by both the parties. It is true that even in the past, after agreement, Pakistan has not honored his commitments. As you know, you are aware that on the line of control, the ceasefire was already existing from 2021 onwards. And largely, it continued till now, till after this strike, they started having the ceasefire violations, initially by the small arms, subsequently by using the mortars and the long range guns.
Ji, 22 April ke baad.
Besides, 22 April ke baad, 23rd onwards they started, initially by the small arms, and subsequently they enhanced the mortar and artillery fire, wherein we also had certain civilian casualties on our side. And of course, the 7th May onwards, the entire dynamics of the war fighting has undergone a major change, which you are already well aware.
Right.
Now, once tomorrow the DGMOs speak, they will exactly go into the nuances of how this does this, ceasefire comes into agreement. And it will be total cessation of firing altogether of all kind of weapons, not only against line of control, but also on the entire border of Pakistan, including the IB.
राइट जो आप कह रहे हैं, ये जो संपूर्ण ऑपरेशन सिंदूर पर राजनाथ सिंह जी ने आज लखनऊ में क्या कहा, आइए सुनते हैं.
हमने दिखाया है भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी. भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था. हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया. भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया. हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है.
अब इस विशेष चर्चा को अब हम यहीं समाप्त करते हैं. आपका बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी हमें ज्वाइन करने के लिए और सभी को.
मेजर जनरल अशोक कुमार, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस स्पेशल प्रोग्राम.